श्री साई राम साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम आप सबके लिए लाएंगे
आदर्श जीवन आनंद उपवन, दिव्यानुभव एवं प्रेमावतार श्री सत्यसाई श्रृंखला के तहत मोहक कथाएं और अवतार वाणी के अंतर्गत आप श्री भगवान द्वारा एक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए दिव्य संभाषण के एक अंश के साथ साथ गान सरिता के अंतर्गत एक गीत भी सुनेंगे।
आज साई का प्यार जीवन आधार प्रोग्राम में हम हिमाचल प्रदेश की श्रीमती सुषमा कुमारी जी के अनुभवों का श्रवण लाभ भी लेंगे।
तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।
प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। यहाँ आज के प्रसंग में हम सुनेंगे स्वामी के बचपन की कुछ घटनाओं का वृत्तांत, जैसे स्वामी का बुक्कापट्टनम से कमलापुर के स्कूल में पढ़ने जाना और फिर अपने बड़े भाई साहब के परिवार के साथ आगे की पढ़ाई के लिए उर्वकोंडा आ जाना तथा स्वामी के कमलापुर से पुष्पगिरी मेले में जाने वाली घटना का वर्णन इत्यादि।
अध्याय चार, गान लोल। धर्मनिष्ठ राजू वंश के सत्यनारायण के भाई शेषम राजू का विवाह कड़प्पा जिले के कमलापुर ग्राम के पशुपति सुब्बा राजू की सुपुत्री से संपन्न हुआ। बुक्कापट्टनम में अंग्रेजी भाषा की तीसरी कक्षा तक ही शिक्षा की सुविधा थी। प्रतिभाशाली सत्या को किसी भी प्रकार उच्च शिक्षा दिलाकर, डिग्रीधारी बनाकर बड़ी सरकारी नौकरी दिलाने की कामना उसके माता पिता ने की थी। इस कारण शेषम राजू ने अपने ससुराल वालों के आश्रय में सत्या को छोड़कर स्वयं पंडित की परीक्षा की तैयारी के लिए अनंतपुर की ओर प्रस्थान किया। उस स्कूल में नित्य पाठ्यक्रम आरंभ होने के पूर्व विद्यार्थी तथा शिक्षक गण मिलकर ईश वंदना किया करते थे। शाला में प्रवेश के कुछ समय पश्चात ही एक दिन सत्या ने मंच पर खड़े होकर अपने मधुर एवं भावपूर्ण गायन से संपूर्ण सभा को मंत्रमुग्ध कर दिया। रोमांचित हो बहुतों ने हर्ष के आंसू बहाए। वातावरण शांत एवं पवित्र हो उठा। उस दिन से वह स्थान सत्या के लिए सुरक्षित हो गया। केवल शाला में ही नहीं, वरन गांव के प्रत्येक समारंभ में रंगमंच पर सर्वप्रथम प्रवेश का अधिकार सत्या का ही हो गया। जब तक उसके गीत का श्रवण ना हो जाए, सभा शांत नहीं होती। उस शाला में एक ड्रिल मास्टर थे। बाबा आज भी उन्हें अत्यंत प्रेम से याद करते हैं। उन्हें बच्चों से अति ममता थी। स्काउट मास्टर का कार्य भी वे करते थे। उस समय स्काउट दल पढ़ाई लिखाई से निरासक्त, भटकने वाले और पेटू लड़कों का दल समझा जाता था। ड्रिल मास्टर ने सोचा यदि सत्या जैसा शीलवान लड़का स्काउट दल में प्रवेश कर ले तो दल के विषय में जनता की यह धारणा बदल जाएगी। सत्या की प्रामाणिकता में इतनी श्रद्धा थी संपूर्ण ग्राम की। बहुत दिनों तक सत्या ने उनके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, वह तटस्थ ही रहा। तब मास्टर साहब ने अपनी इस योजना में सत्या के दो मित्रों को भी मिला लिया। उन दोनों ने स्काउट दल की पोशाक गुप्त रीति से ले जाकर सत्या के डेस्क में रख दी। उनके इस स्नेह एवं आग्रह से सत्या का निर्णय ढीला पड़ गया। उसका अंतःकरण भी मान गया। सत्या ने दल में प्रवेश पा लिया। इन्हीं दिनों में प्रांत की सबसे बड़ी कही जाने वाली पुष्पगिरी यात्रा का समय आया। सेवा कार्य के लिए ड्रिल मास्टर को यह एक उत्तम अवसर प्रतीत हुआ। यात्रा में आने वाले यात्रियों के रहने की व्यवस्था करना, मंदिर के पास की भीड़ को नियंत्रित करना, राह भूले बच्चों को सांत्वना प्रदान कर उन्हें उनके माता पिता के पास पहुंचाना, स्नान घाट व मंदिर के पास किसी के आहत होने पर उसकी प्रारंभिक चिकित्सा करना आदि सत्कार्यों का सुअवसर मिलेगा, ऐसा कहकर मास्टर साहब ने बच्चों को उत्साहित किया। पुष्पगिरी जाने आने में बस प्रवास व्यय, कैंप व्यवस्था तथा खाने पीने के खर्च के लिए प्रत्येक बालक से 10 रुपए लाने के लिए कहा गया। सत्या की जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मानव सेवा के लिए जब माधव स्वयं अवतार लेता है, तब यदि मानव ही मानव की सेवा में तल्लीन हो जाए तो कितना फलकारी होगा। इस तथ्य को स्पष्ट करने तथा निस्वार्थ सेवा में ही विशुद्ध आनंद की प्राप्ति है, यह अपने मित्रों से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से सत्या ने पुष्पगिरी कैंप में जाने का निश्चय किया। लेकिन खर्चा, इनका निर्वाह कैसे होगा? सर, आप लोगों के साथ मेरा जाना संभव नहीं है। मैं बाद में निकलकर कैंप प्रारंभ होने के पूर्व आपके पास पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार कह सत्या ने बस का खर्च बचाया, पैदल ही यात्रा करने का संकल्प किया। सर, मेरे बहुत से बंधु उस यात्रा में जा रहे हैं, अपने साथ रहकर खाने पीने का उन्होंने आग्रह किया है। मानने के अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है। कुछ भी हो, शिविर के नियमानुसार मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर खाने पीने का व्यय भी सत्या ने बचा लिया। उसने किसी भी प्रकार से समय काटने का संकल्प किया। सब ग्रामों से सर्वकाल सभी यात्राओं में आने वाले सब बाबा के बांधव ही तो हैं। किंतु किसी भी प्रकार समय काटने के लिए भी कुछ पैसे तो चाहिए ही। इसके लिए सत्या ने एक उपाय की योजना की। पिछले वर्ष की पाठ्य पुस्तकें एक लड़के को बेच दी। 12 रुपयों में वे पुस्तकें मुझे मिल जाएं तो मेरा सौभाग्य होगा। ऐसा सोचने वाले उस बालक से केवल 5 रुपए लेकर ही सत्या ने वे किताबों का बंडल उसे सौंप दिया और हंसते हुए कहा, मुझे इस समय 5 रुपए की ही आवश्यकता है। 15-16 मील लंबा रास्ता, मानव देह, पुष्पगिरी के रेत के टीलों पर अपनी तौलिया बिछाकर और थैले का तकिया बनाकर सत्या सो गया। यात्रियों की उस भीड़ में वह थैली तथा उसका सामान किसी एक पुण्यवान के हाथ लग गया। बाबा कहते हैं, मैं जोर से हंस पड़ा, उन्हें क्रोध नहीं आया, न वे व्याकुल हुए। वहां 10 कदम आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक पत्थर पर कोई एक बंडल बीड़ी और एक इकन्नी छोड़ गया है। वह सिक्का हाथ में लेकर सत्या यात्रा स्थान के मैदान में पहुंचा। वहां एक महानुभाव सत्या की सेवा के लिए बड़ी ठाट से बैठे हुए थे। उसके सामने बिछे काले कपड़े पर एक गोल भाग्य चक्र बना हुआ था, जिसके खाने पर सांकेतिक चिन्ह बने थे। उसके रखे हुए बर्तन में 1 पैसा फेंक उस कपड़े के बीच में लगी कील पर स्थित कांटे को जोर से घुमाना पड़ता था। वह जिस खाने के समक्ष स्थिर हो जाए उस खाने में अंकित सांकेतिक अंक से गुणा करके वह पैसे देता था। यदि 4 अंक हो तो 1 आना, 8 हो तो 2 आना, इस क्रम से 16 अंक तक अंकित थे। लेकिन सावधान, खाने में अंकित अर्ध या शून्य के संकेत के सामने कांटा रुक जाए तो आपके दिए हुए पैसे उसकी भेंट। सत्या ने उसके पास जाकर कांटा घुमाकर 12 आने बनाए। इतना ही यथेष्ट होगा कहकर वहां से चला गया। अन्याय से उसके पेट पर प्रहार करना मुझे उचित नहीं लगा। बाबा कहते हैं, 12 आने, 12 आने यथेष्ट थे आपको 1 सप्ताह के व्यय के लिए? मेरे इस प्रकार प्रश्न करने पर बाबा ने कहा, क्या मैं सदा नहीं कहता कि तुम्हारा संतोष ही मेरा आहार है? अब भी वही है, तब भी वही था और सदा यही नियम रहेगा। खाना खा चुके? इस प्रकार मास्टर साहब के पूछने पर उनके संदेह के निवारण के लिए सत्या अपना हाथ आगे बढ़ाया। सौंधी सुगंध पावे कहते, तुम्हारे बंधुओं द्वारा तुम्हें स्वादिष्ट भोजन ही मिल रहा है, तुम पुण्यवान हो, रोज वही भोजन करो। यथेष्ट खाना मिल रहा है तुम्हें क्या, कहते हुए मास्टर साहब सत्या को ही अधिक कार्य सौंप देते। वह पट्टा भी हंसते हंसते ही सब कार्य कर अपने साथियों के सम्मुख सेवा तत्व के गूढ़ रहस्य को स्पष्ट कर देता। पर उपकार कहना भूल है, सब उपकार हम अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि पर है ही नहीं, वह दूसरा हमसे अलग ही नहीं, वह ही हम है, नाम रूप भिन्न है, केवल इतना ही है, पर द्रोह अपने ही द्रोह के समान है, कहकर सहपाठियों को वह जागृत करते। स्काउट दल के कमरा पर लौटने के समय मास्टर साहब ने सत्या को भी अपने साथ लाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बस वह ना देते हुए बस में आने की इच्छा ना होने से सत्या अपने साथियों में से किसी प्रकार अलग ही पैदल घर वापस लौटा। कमलापुर में अपने भाई की ससुराल में सत्या को दोनों समय भोजन मिल जाता था, यह तो ठीक है, किंतु अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए पैसे कहां से आते। कभी कभी कमीज में बटन ना होने पर और खरीदने के लिए पैसे भी ना होने पर वह किसी बेल से कांटा तोड़ उसे पिन के समान उपयोग में लाता। पैसा ना होने पर कभी कभी बाबा कोटे सुबन्ना की दुकान में चले जाते। श्री सुबन्ना औषधि तथा नए नए फैशन की वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे। उन दिनों प्रचार कला में पारंगत लोग बच्चों का एक समूह तैयार कर उनके हाथों में विज्ञापन की पताकाएं देकर गीत गवाते और इस प्रकार लोगों का कौतूहल जागृत कर अपनी वस्तुओं के विज्ञापन द्वारा धनकार्जन करते। सत्यनारायण के काव्य सामर्थ्य से परिचित सुबन्ना ने अपने पेटेंट औषधियों के प्रचार के लिए उससे कई गीतों की रचना करवाई। ऐसे कुछ गीतों की बाबा को आज भी याद है। इन प्रचार गीतों के पारिश्रमिक के रूप में पेन, पेंसिल, जूते, छतरी, कपड़े, कंबल, आईना आदि वस्तुएं सत्या को मिल जाते थे। सुबन्ना पुण्यवान ही कहा जाएगा। वे गीत केवल उन बच्चों की ही नहीं वरन संपूर्ण ग्राम की संपत्ति बन गए। कमलापुर निवासी आज भी अत्यंत अभिमान से कहा करते हैं, अपना निज स्वरूप बाबा ने सर्वप्रथम उर्वा कोंडा में ही प्रकट किया होगा, परंतु उनके सच्चे स्वरूप को पहचान कर उन्हें पूजने का गौरव हमारे ग्राम को ही प्राप्त है। सत्य साई बाबा को छोटी आयु में ही जिस प्रकार कमलापुर में अभिनंदन प्राप्त हुआ वैसा अन्य ग्रामों में नहीं हो पाया, क्योंकि कमलापुर की जनता निष्कपट हृदय से उन्हें साई बाबा ही मानती थी। अब हमें भी शीघ्र उर्वा कोंडा की ओर प्रस्थान करना होगा। इस भागवत का अगला स्कंद वहीं से प्रारंभ होगा। पंडित की परीक्षा पास करने पर शेषम राजू को उर्वा कोंडा हाई स्कूल में नौकरी मिल गई। अपने छोटे भाई को SSLC तक पढ़ाने का सुअवसर देख हर्षित होकर शेषम राजू सत्या को साथ लेकर उर्वा कोंडा पधारे।
अभी आप सुन रहे थे प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के तहत स्वामी के बाल्यकाल से जुड़ी कुछ एक घटनाओं का प्रसंग।
अब प्रस्तुत है दिव्यानुभव के अंतर्गत एक अलौकिक वृत्तांत। कथा का शीर्षक है रोग विनाशक भगवान, स्वास्थ्य प्रदायक भगवान।
रोग विनाशक भगवान, स्वास्थ्य प्रदायक भगवान। बाबा को सबसे अधिक प्रसन्नता गरीब और बेसहारा लोगों की सच्ची सेवा करने से होती है, और भगवान जब इस प्रकार की सेवा से प्रसन्न होते हैं तो ऐसी प्रसन्नता एक अद्भुत, अकल्पनीय तथा नाटकीय चमत्कारिक रूप से प्रकट होती है। तमिलनाडु में ऊटी से 10 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है मेलकोवटी। स्वामी के 80वें जन्म दिवस के 3 वर्ष पहले स्वामी को सेवा के पुष्प के रूप में अर्पित करने के लिए साईं भक्तों ने इस गांव को गोद लिया था, परंतु उन्हें ये अनुमान नहीं था कि वास्तव में स्वामी ने अपनी दिव्य लीला को एक चमत्कार के रूप में प्रकट करने के लिए उन साईं भक्तों को इस गांव तक पहुंचाया है और सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। ऊटी साईं समिति के सदस्यों ने इस गांव में जनवरी 2003 में सेवा की गतिविधियां शुरू की। सबसे पहले उन्होंने धुंध आच्छादित पहाड़ियों से घिरे इस मनोरम गांव में सुबह सवेरे के समय नगर संकीर्तन शुरू किया। भजन गायन के बाद वे गांव में हर एक घर में जाकर प्रसाद बांटते थे। इस दौरान उन्हें एक गली के छोर पर जर्जर खस्ता हाल में अलग थलग पड़ा एक घर दिखाई दिया। वहां अंदर जाकर उन्होंने जो हाल देखा इससे वे बड़े विचलित और दुखी हो गए। वहां ठंडे व नंगे फर्श पर एक बूढ़ी लाचार महिला पड़ी हुई थी। उन्होंने घर के भीतर जहां भी देखा उन्हें घोर गरीबी और खस्ता हाली नजर आई। कीर्तन मंडली के साथ आए कुछ गांववासियों ने बताया कि ये बूढ़ी लाचार महिला बचपन में ही अनाथ हो गई थी। उसके माता पिता जो थोड़ी बहुत जमीन छोड़ गए थे उसी से वो अपना गुजर बसर करती थी, मगर जब वो 30 साल की थी उस पर अचानक एक और मुसीबत टूट पड़ी। उसके बाजू और टांगे बेकार हो गए और वो विकलांग हो गई। उस वृद्धा की ये दारुण दशा सुनकर स्वामी के भक्तों ने तुरंत उसी समय उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। बिना कोई विलंब किए उस वृद्धा के लिए एक चारपाई, कंबल तथा बिस्तर लाया गया और उसे फर्श से उठाकर चारपाई पर लिटाया गया। फिर उन्होंने तय किया कि प्रतिदिन उनमें से कोई एक व्यक्ति उस महिला के पास रहकर उसकी देखभाल व सेवा करेगा। और इस तरह एकजुट होकर साईं भक्तों ने एक निस्वार्थ व संगठित सेवा की शुरुआत की। ये सेवा कई महीनों तक बिना किसी रुकावट के चलती रही। गांव के लोग बाबा के भक्तों की इस निस्वार्थ व प्रेम भरी सेवा पर हैरान थे। फिर गांववासियों को इस वृद्धा की उपेक्षा करते रहने पर अपराध बोध होने लगा। उन्होंने इस बारे में विचार के लिए ग्राम पंचायत बुलाई और सबने मुक्त कंठ से ऊटी साई समिति के निस्वार्थ सेवा भाव की बड़ी सराहना की। ये साई भक्त वृद्धा की देखभाल के लिए हर रोज हर हालत में ऊटी से गांव तक 20 किलोमीटर आते जाते थे और उनके सेवा भाव में कभी कमी नहीं आई। इनके सेवा भाव से प्रेरित होकर गांववासियों ने तय किया कि अब इस असहाय वृद्धा की सेवा और देखभाल वे खुद करेंगे। इस वृद्धा की देखभाल गांववासियों की जिम्मेदारी होगी। गांव के 30 लोग इस काम के लिए आगे आए तो सेवा के लिए मानो एक स्वस्थ व प्रेम भरा वातावरण बन गया और धीरे धीरे अधिक लोगों के इस सेवा के लिए आगे आने के कारण उन ग्रामवासियों में इस कार्य के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सी तय हो गई और उन्होंने इस काम के लिए दिन तथा व्यक्ति का निर्धारण पर्ची निकालकर तय किया। प्रत्येक परिवार के लिए एक दिवस सुनिश्चित किया और इस प्रकार माह के सभी 30 दिवस के लिए सेवा करने वाले परिवार व व्यक्ति निर्धारित हो गए। इस तरह पूरे महीने वृद्धा की देखभाल की पक्की व्यवस्था हो गई और सेवा के लिए काम करने वाले प्रत्येक परिवार का नाम एक पर्ची पर लिखकर भगवान को अर्पित किया जाने लगा। फिर फिर ग्रामवासियों ने उस वृद्धा के घर को भी ठीक करने का निश्चय किया। ग्रामवासियों द्वारा घर की दीवारों की पुताई की गई, फर्श को पक्का किया गया और घर की छत की मरम्मत की गई। उस वृद्धा के घर की रसोई की भी मरम्मत की गई और उस रसोई में ही वृद्धा के लिए ग्रामवासी प्रतिदिन ताजा व गर्म भोजन भी पकाने लगे। बीमार लाचार वृद्ध महिला को अब गर्म खुराक खाने के लिए मिलने लगी, जो कि ऊटी के ठंडे मौसम के लिहाज से उसके लिए बड़ी लाभदायक थी। वृद्धा का पुराना खस्ताहाल घर अब शुभ स्थान बन गया था। जो मिल्कोवटी गांव पहले स्वार्थी सोच से आपस में बंटा हुआ था, वो अब निस्वार्थ सेवा भावना से एकजुट हो गया था। सितंबर 2004 में नीलगिरी जिले में समितियों द्वारा गोद लिए गए 80 गांव में भजन गायन का कार्यक्रम आयोजित किया जाना तय किया गया। फिर एक दिन मिल्कोवटी गांव की बारी आई और सारे ग्रामवासियों ने एक स्वर में सर्वसम्मति से कहा कि भजन के कार्यक्रम का आयोजन इस वृद्धा के घर में होना चाहिए। उस वृद्धा के घर के सामने एक सुंदर शामियाना लगाया गया और बड़ी तन्मयता से भजनों का गायन होने लगा। पूरे गांव के लोग इसमें शामिल हुए। वृद्धा अपने कमरे में लेटी हुई भजन सुन रही थी। इसी दौरान एक असाधारण व अद्भुत चमत्कार हुआ। वो वृद्धा जो पिछले 20 साल से हाथों व पांवों से लाचार थी, अपने बिस्तर पर असहाय पड़ी हुई थी, अचानक वो बिना किसी के मदद के एकदम बिस्तर पर उठकर बैठ गई। दरअसल कमरे के बाहर भजन गा रहे भक्तों को पता ही नहीं चला कि कमरे में क्या हो रहा था। फिर वो महिला धीरे धीरे उस स्थान पर चलकर जा पहुंची जहां भजन चल रहा था। भक्तजन भजनों में इतने मग्न थे कि कई लोगों को पता ही नहीं चला कि कब वो वृद्धा वहां आ गई। जब तक कि वो भजनों में बाबा के लिए बनाए गए स्थान तक नहीं पहुंची और वहां पहुंचकर उसने श्रद्धा और भक्ति में बाहें फैला दी, वो बाबा के दरबार में झूमने लगी। समस्त भक्तजन ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वहां उपस्थित सभी लोग निःशब्द हो गए, उनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। तब उस 50 वर्ष की महिला ने बताया कि पिछली रात बाबा ने सपने में उसे दर्शन दिए और उसके हाथों और टांगों की मालिश की। इससे उन अंगों का लकवा सदा के लिए एकदम दूर हो गया। सभी भक्तजन ये सुनकर स्तब्ध रह गए। वे सब फिर खुशी और उत्साह से झूम उठे। वहां के ग्राम प्रधान जो शराब का सेवन करते थे, वे इस चमत्कार से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत प्रण लिया कि वो अब कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। बाबा इस सुदूर गांव में अपने भक्तों के माध्यम से पहुंचे और अपनी अलौकिक शक्ति से उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि किस प्रकार एकजुटता और पवित्रता की भावना से की गई सेवा से भगवान की दिव्य कृपा और अनुग्रह को प्राप्त किया जा सकता है। बाबा ने यही विश्वास, यही सच्चाई हम सभी को बार बार महसूस कराई है ना?
अभी आप दिव्यानुभव के अंतर्गत रोग विनाशक भगवान, स्वास्थ्य प्रदायक भगवान शीर्षक का एक कथानुभव सुन रहे थे। इस वृत्तांत का अनुवाद एवं ध्वनि अंकन छत्तीसगढ़ के साई भक्तवृंद द्वारा समर्पित किया गया था।
आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम अंकल लायंस टेल्स के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कड़ी प्रस्तुत करेंगे। इस कहानी का शीर्षक है सच्चा समर्पण।
सच्चा समर्पण। बहुत समय पहले सागर किनारे छिछले पानी में मछलियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड में हजारों मछलियां थीं। वो गहरे पानी की मछलियां नहीं थी, इसलिए कम पानी में किनारे के आसपास ही रहा करती थी और हल्की फुल्की लहरों के साथ किनारे की तरफ आती और खूब मस्ती करती थी। वैसे तो वे अपने जीवन में खुश थी और संतुष्ट भी, मगर हर रोज सुबह उठते ही उनके मन में एक डर जाग उठता था, मछुआरे के जाल का डर। हर सुबह मछलियों की तरह ही किनारे के पानी में मछुआरा भी आता था अपना जाल फैलाने के लिए। रोज दर्जनों मछलियां उस जाल में फंस जाती थी। मछलियों के सुखी जीवन में बस इसी बात का डर था। उन मछलियों ने मछुआरों के जाल से बचने के लिए कई तरकीबें निकाली, मगर कोई हल ना निकल पाया। कुछ मछलियां अचानक फंस जाती थीं, कुछ सुस्ती के कारण और कुछ तो बेचारी जानते बूझते हुए भी भाग नहीं पाती थी। लेकिन उस झुंड में एक मछली थी जो मछुआरे के जाल से नहीं डरती थी। वो थी बबली। वो तो उस वक्त भी मजे से तैरती फिरती थी जब दूसरी सारी मछलियां ये सोचने में लगी रहती थीं कि अगली सुबह जान बचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाएगा।
भाइयों और बहनों, वर्तमान में जियो, इस पल में जियो, खुश रहो और मुस्कुराते रहो।
बबली, तुम्हारे लिए ये कहना बड़ा आसान है, क्योंकि अब तक तुम उस जाल से बची हुई हो और उसे डरती भी नहीं।
इसमें किस्मत की तो कोई बात ही नहीं है। असल में मछुआरे के जाल से बचने के तीन पक्के उपाय हैं और तीनों एकदम सरल।
क्या हमें भी वो उपाय बताओगी ताकि हम भी बेफिक्र होकर जिए?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहला उपाय है गहरे पानी में गोते लगाने की कला सीख लो। मछुआरा कभी गहरे पानी में जाल नहीं डालता।
ये संभव नहीं है बबली, हम छिछले पानी की मछलियाँ हैं। चलो दूसरा उपाय बताओ।
अपने दांत मजबूत और तीखी धार वाले बनाओ, ताकि जाल में अगर फंस भी जाओ तो उसे काट कर आजाद हो जाओ।
अरे, हमारे दांत इतने पैने और मजबूत नहीं हैं, इनसे जाल काटना तो असंभव है।
तुम सही हो, मेरे भी दांत इतने मजबूत नहीं हैं और ना ही मैं गहरे पानी में जाती हूँ।
तो क्या करती हो?
मैंने तो तीसरा रास्ता अपनाया है।
और वो क्या है?
जब मछुआरा आता है और जाल फैलाने लगता है, मैं सीधा जाकर उसके पाँव के पास तैरने लगती हूँ। वही एकमात्र जगह है जहाँ जाल कभी नहीं पहुँच सकता।
शाबाश बबली, कितना अनोखा उपाय है। हमें भी ये तरीका बताने के लिए धन्यवाद। अब हमें मछुआरे के जाल से डरने की कोई जरूरत नहीं है।
इस कहानी में बबली हमें भगवान द्वारा फैलाए माया के जाल से संसार रूपी भवसागर में रहते हुए भी हम फंसने से कैसे बच सकते हैं, यह रहस्य समझाया है। पहला उपाय है ऊपरी हलचल से बचकर गहराई से मनन करके ज्ञान प्राप्त करो। यह मार्ग ज्ञान मार्ग है। दूसरा उपाय है जाल को काटकर मुक्त हो जाओ। यह मार्ग कर्म मार्ग कहलाता है। तीसरा सबसे सरल और अच्छा उपाय है कि उसी भगवान के चरणों में समर्पण कर दो जो माया का जाल फैलाता है। यह मार्ग समर्पण का है, जो भक्ति मार्ग कहलाता है। जब हम प्रभु के चरणों में शरण ले लेते हैं तो हमारे जीवन की सुरक्षा प्रभु की जिम्मेदारी हो जाती है।
आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे अंकल लायंस टेल्स के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कड़ी। इस कथा का शीर्षक था सच्चा समर्पण।
आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी।
अब सुनते हैं हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। इसमें हम हिमाचल प्रदेश राज्य के जिला हमीरपुर से श्री सत्य साई संगठन की महिला प्रभारी श्रीमती सुषमा कुमारी जी से हुई हमारी भेंट वार्ता सुनेंगे। सुषमा जी से वार्तालाप कर रहे हैं श्रीमान विकास जी गुप्ता।
ओम श्री साई राम। साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम में आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से श्रीमती सुषमा कुमारी हैं। सुषमा कुमारी जी हिमाचल प्रदेश में महिला विभाग की प्रभारी हैं, सेवा की प्रभारी हैं। सुषमा जी आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
धन्यवाद भैया। भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम आप सबको साई राम।
सुषमा जी आप को भगवान के बारे में सबसे पहले कैसे मालूम हुआ और आप भगवान के फोल्ड में कैसे आई?
भगवान के बारे में मैंने सबसे पहले 1998 में सुना था। उसके बाद 2000 में मेरे देवर जी भगवान के यहाँ पुट्टपर्ती में आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए और आंध्र प्रदेश में ऐसे साक्षात भगवान ने अवतार लिया है। तो उसी समय ये जिज्ञासा हुई कि अगर ऐसे कोई अवतारी पुरुष इस धरा पे या इस धरती पर आए हैं तो जरूर उनके दर्शन करने चाहिए। और भगवान ने बहुत जल्द मौका दिया। 2002 में पहली बार स्वामी ने यहाँ आने का मौका दिया
जी।
जब यहाँ पहुंचे और भगवान के दर्शन हुए तो एकदम से इंसान जो खुद दर्शन करता है उसकी फीलिंग्स वो खुद महसूस कर सकता है कि भगवान के जब वो पहली बार दर्शन कर रहा है तो भगवान कितनी अट्रैक्शन एकदम से देते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं किसी युग में आपका नाता जो है वो इनसे रहा है। उसके बाद भगवान के साथ रेगुलर संबंध जो था, यात्रा भगवान के साथ जो थी वो जीवन की शुरू हो गई
जी।
और पहले तो मैंने बच्चों को देखा, छोटे-छोटे बच्चे जो भगवान के स्कूल में पढ़ते हैं, तो प्रेयर रही स्वामी से कि स्वामी प्लीज बच्चों को एडमिशन देना। तो हाँ, भगवान ने ये कृपा की, दोनों बच्चों को यहाँ एडमिशन मिला।
बहुत बढ़िया।
और इसके बीच में ही जब बच्चे बेटा 4 साल का था तो बीच में ही एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि उसको देख के भगवान, चलो भगवान का एक ये है कि भगवान टाइम टू टाइम परीक्षा तो लेते रहते हैं और परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न करते हैं कि जिनसे हमारा फेथ जो है वो ना डगमगाए और भगवान के ऊपर हमें और ज्यादा विश्वास और आस्था बढ़े। तो कुछ ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ कि सर्दियों का टाइम था और दोपहर के 2 बज रहे थे, बच्चा बाहर गैलरी में खेल रहा था और अचानक थोड़ा सा काम के लिए मैं थोड़ा सा अंदर गई और बच्चा जैसे ही चेयर के ऊपर से उसने चढ़ना चाहा तो वो एकदम से वो नीचे गिर गया। और वो मैक्सिमम हाइट जो थी वो 16 फुट की थी क्योंकि वो ऊपर से फर्स्ट फ्लोर था और ऊपर से वो गैलरी के ऊपर रेलिंग के ऊपर से नीचे गया। और उस समय एकदम से इतनी जोर की आवाज हुई और शहर में ही हमारा घर था तो एकदम से लोग जो थे वो सबने देखा कि बच्चा गिर गया और आवाज भी सबको सुनाई दी
जी।
तो सब एकदम से इकट्ठा हो गए और सबकी सोच यही थी कि इतनी हाइट से अगर बच्चा गिरता है और सर के बल गिरता है तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
चोट तो निश्चित लगी होगी।
हाँ, लगी भी होगी और बचने का भी कोई चांसेस नहीं था, क्योंकि नीचे जो फर्श था वो बिल्कुल पक्का और वहां से टैप्स पानी की जा रही थी।
जी जी जी।
लेकिन एकदम से जितनी जोर की आवाज आई, मैंने एकदम से आवाज लगाई कि कैसे हो बेटा, एकदम से उसने रिएक्ट किया कि मम्मा मैं ठीक हूं, और एकदम से वो पौड़ियां चढ़ना शुरू हो गया। साथ में ही हमारे एक डॉक्टर का घर था और वो भी साइड ड्यूटी थे, जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी या लोग बाकी के इकट्ठे हुए तो वो भी दौड़ के आए कि मैं बच्चे को जाके देखूं क्या हुआ है कैसे। उन्होंने एकदम से उसको सारा चेक किया, सर पूरी बॉडी उसकी चेक की
जी।
तो भगवान की बहुत बड़ी ग्रेस थी कि उस बच्चे को खरोंच तक भी नहीं आई हुई थी। और वो डॉक्टर भी बाबा के बहुत ज्यादा डिवोटी हैं, तो उन्होंने भी यही शब्द कहे कि भगवान पता नहीं कहाँ खड़े थे, कैसे खड़े थे, और वो हमेशा डिवोटी की रक्षा करते हैं, और इस बच्चे को इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी इसको कहीं भी चोट
भगवान ने ही उसकी रक्षा करी।
और जो आसपास के लोग थे वो भी ये देखकर एकदम से अचंभित रह गए कि ऐसा कृष्णा तो हमने पहली बार देखा कि 16 फुट से बच्चा गिरे, सर के बल गिरे और उसको चोट तक नहीं आई।
सही राम।
और यही भगवान का ये एक ऐसा पॉइंट था जिंदगी का कि सारी जिंदगी स्वामी ने एकदम से चेंज कर दी, क्योंकि अगर किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो विश्वास तो उसका कभी डगमगा नहीं सकता।
बिल्कुल।
और इसी बच्चे के साथ फिर स्वामी के स्कूल में रहा ये 2 साल तक। स्वामी ने एडमिशन दिया था तो थोड़ा नॉटी था।
किस समय ये यहाँ पढ़ा है?
ये 2006 में इसको एडमिशन मिला था यहाँ पे, और 2008 तक ये रहा
जी।
फिर इसका थोड़ा मदर के साथ ज्यादा अटैचमेंट थी तो नहीं, मतलब रुकने के लिए यहाँ तैयार नहीं था ये। बाबा से भी हम लगातार प्रेयर कर रहे थे, फिर स्वामी के ही शब्द थे कि माँ को बच्चे की जरूरत है और बच्चे को माँ की जरूरत है।
जी।
पर स्वामी ने थोड़ा सा बीच में ऐसा किया कि जब अक्टूबर में वेकेशंस हुई तो बच्चे का, हमें ऐसा लगता था कि हम बच्चे को वापस नहीं लेके जाएंगे।
सब पेरेंट्स का यही फीलिंग होती है,
क्योंकि स्वामी के यहाँ से कोई भी स्कूल नहीं छोड़ना चाहता।
बिल्कुल बिल्कुल।
पर स्वामी के शब्द थे तो हमें तो फिर सरेंडर करना ही था। पर बच्चा हमेशा, एक उसने बात सुनी थी किसी टीचर से कि गणेशा टेम्पल की जो 108 फेरियां लेते हैं वो स्वामी उसके पास जरूर आते हैं,
परिक्रमा
जो करते हैं वो उसके पास। और उसने सुबह, छुट्टियां थी 15 दिन हम यहीं रुके पुट्टपर्ती में, तो सुबह उसने 4 बजे उठ के गणेशा जी की 108 परिक्रमा करनी।
उसका उस समय उसकी उम्र कितनी रही होगी?
उसकी उम्र उस टाइम 7 साल की थी।
इतनी कम उम्र में रोज 108 परिक्रमा करना बहुत बड़ी बात है।
और फिर स्वामी डेली उसके पास जाते थे, उसका लेटर लेते थे, और वही उसकी लाइफ के लिए कैसा स्वामी ने उसको आशीर्वाद दिया कि 15 दिन स्वामी रेगुलर उसके पास के, स्वामी ने बात की, आशीर्वाद दिया। और फिर अप्रैल में उसको हम वापस ले गए, क्योंकि वो तो स्वामी ने पहले ही निश्चित कर दिया था। उसके बाद उसका इतना नॉटी था कि यहाँ से जब हमें ले जाना पड़ा तो इस बात का हमें दुख तो था, पर स्वामी की इच्छा थी तो हम भी एग्री थे। पर फिर जिस स्कूल में भी वो गया, कभी हम एक दिन भी उस स्कूल में नहीं गए, कोई कंप्लेंट नहीं आई, हेड बॉय रहा स्कूल का और एक्सीलेंट अवार्ड उसको मिले, तो ये सब भगवान की ही कृपा है। उसके बाद उसका सैनिक स्कूल का इंटरव्यू था,
हिमाचल प्रदेश के सैनिक स्कूल में।
हाँ जी, सुजानपुर टीरा में एक ही स्कूल है, सैनिक स्कूल है एचपी में
जी।
तो वहां का उसका रिटर्न का था, टेस्ट का था, उसने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया,
बहुत बढ़िया।
और इंटरव्यू के लिए उसका था थोड़ा सा, तो ऐसा 9th क्लास में ऐसा होता है कि जनरल के लिए एक ही सीट थी और
बहुत कॉम्पिटिशन रहा उसके लिए।
हाँ जी, 7,000 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था और कम से कम 40-50 बच्चे जो है वो इंटरव्यू में, मतलब वो रिटर्न क्लियर कराते थे, तो उसके बाद फिर इंटरव्यू में ही उनका डिसाइड करते थे कि किसको रखा जाएगा। तो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे ही उस इंटरव्यू में निकल सकते हैं
जी, जी।
क्योंकि उनका जो जनरल नॉलेज का लेवल था वो काफी हाई रहता है।
जी जी बिल्कुल।
तो स्वामी की ही ग्रेस रही, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि हम भी उसको अटेंड नहीं कर पाए। और जिस दिन उसका इंटरव्यू था तो सुबह सुबह मेरे से थोड़ी सी बात हुई, तो मैंने उसको कहा कि जो भी मैं अभी कुछ बोलूंगी वो आपने याद रखना, जितने भी मैं प्रश्न पूछूंगी उसके जाने से पहले
जी।
तो उससे मैंने 35 और 40 के बीच में प्रश्न किए।
अच्छा।
और उसको आंसर भी खुद ही बताए, क्योंकि उसको तो नहीं आते थे
जी।
पर भगवान की एक बहुत बड़ी ग्रेस और बहुत बड़ा जिसको हम चमत्कार भी बोल सकते हैं कि उस बच्चे का इंटरव्यू उन्हीं प्रश्नों से शुरू हुआ और उन्हीं प्रश्नों के ऊपर खत्म हो गया। और एक 41 प्रश्न था जो मैंने उससे प्रश्न जरूर किया लेकिन उसका आंसर मुझे खुद भी नहीं आता था
जी जी जी।
और वही प्रश्न उससे पूछा गया और उसको आंसर नहीं आता था।
अच्छा,
पर भगवान का ये था कि जब 40 उसने आंसर दे दिए थे तो स्टेट में वो फर्स्ट रहा और वहां भी भगवान ने बड़ी कृपा की।
बहुत मुबारक उसके लिए आपको।
और उसके बाद फिर आज भी वो प्लस टू करके एनडीए कर गया और आगे स्वामी ने उसकी स्वामी की बहुत ज्यादा ग्रेस है कि आगे भी वो एनडीए क्वालिफाई कर गया। ट्रेनिंग में आज चला हुआ है आजकल उसका सेशन।
जी जी जी।
और भगवान का यही आशीर्वाद है और स्वामी ने यही हमें प्रेरणा दी है कि भगवान के मिशन में हमने काम 2002 से शुरू किया और पहली बार मंदिर में ही सेवा कार्य मुझे मिला
जी जी।
और वहीं से शुरू हुआ सारी जीवन की जो भी यात्रा है
जी।
तो स्वामी ने 2007-08 तक आते आते स्वामी ने हिमाचल प्रदेश के महिला विंग का सेवा का कार्यभार दिया
जी।
तो आज भी उसी कार्यभार के अधीन हम काम कर रहे हैं भगवान जी जी। के मिशन में और जो भी हमें यहाँ से जितने भी प्रशांति के जितने भी प्रोग्राम्स जाते हैं वो समिति के अंदर हम रेगुलर करते हैं। बाल विकास है, ब्लड डोनेशन है और जो भी ग्राम सेवा भगवान के राम सेवा जो स्वामी ने नाम दिया है उसके तहत हमने विलेज अडॉप्ट किए हुए हैं। तो जो विलेज के अंदर हमने परिवार अडॉप्ट किए हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम सारी उनकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है उसको हम पूरा करते हैं। और एक परिवार ऐसा था कि जिसका काफी इनकम सोर्सेज कोई नहीं था और जो उस परिवार का मुखिया था वो बहुत बीमार था, बेड रिडन था वो बिल्कुल पूरी तरह से और उनके 3 बेटियां और 1 बेटा।
अच्छा।
और उनके वाइफ भी कोई जॉब नहीं करते थे तो कोई सोर्सेज नहीं था उनका। तो जैसे ही समिति में ये चीज ट्रेस आउट हुई कि ऐसा परिवार है तो जितने भी हमारे एक्टिव वर्कर हैं समिति के उन सब ने डिसाइड किया कि इस परिवार की जो है वो पूरी तरह से हेल्प की जाए।
जी जी जी।
तो उनके दवाइयों का खर्चा अवेलेबल, दवाइयां अवेलेबल कराना, वो सारा काम समिति एक्टिव वर्कर्स मिलके सब हम करते रहे। उसके बाद उनके बच्चों का जितना भी खर्चा था वो भी सारे जैसे एजुकेशन में जो भी उनकी रिक्वायरमेंट रही वो भी पूरी की। और ये बात है 2013 और 2014 की।
जी।
उसके बाद उनकी लाइफ का थोड़ा टर्निंग पॉइंट आया कि बच्चे एजुकेशन उनकी पूरी हो गई
जी जी।
और बच्चे भी आगे ग्रेजुएशन कर गया बेटा भी।
तो एजुकेशन में भी समिति ने उनको हेल्प किया।
हाँ जी, पूरी उनकी रिपोर्ट रखते थे कि उनको क्या चाहिए एजुकेशन में भी, किस तरह की हेल्प चाहिए, बुक्स की चाहिए या उनकी यूनिफॉर्म्स की या किसी भी तरह की या उनकी फीस की।
हाँ,
तो वो पूरे समिति के लोग जो थे वो उस तरह से उनकी पूरी हेल्प करते,
मिलकर सब हेल्प करते।
हाँ जी। और आज की डेट में उन तीनों बेटियों की शादी कर दी और उन शादी में भी समिति वालों ने पूरा सहयोग दिया।
बहुत बढ़िया।
जैसे एक बेटी की शादी सेटल हुई तो उसका भी पूरा सहयोग दिया, पूरे फाइनेंशियली पूरा मैटर देख। उसके बाद उस बेटे की जॉब में भी हेल्प की सब, और आज उसकी मदर की भी जॉब लग गई है और वो पूरा परिवार आज हमारी समिति से जुड़ा है। और पूरी तरह से जितना भी हमारा समिति के कार्यक्रम होते हैं उसमें पूरा भाग लेते हैं, हर कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। आज वही में जो स्वामी का ये प्रोग्राम है साई का प्यार जीवन का आधार,
हाँ जी।
तो ये साबित करता है कि उस परिवार को स्वामी ने कितना प्रेम दिया और उस परिवार की पूरी जो जिंदगी की राह थी वो पूरी बदल दी।
बिल्कुल।
और आज वो परिवार हमारी स्मृति में या ऐसे कोई जो लोग हैं उनकी पूरी हेल्प कर रहा है और पूरी तरह से, क्योंकि वो खुद उन परिस्थितियों को झेल चुका है परिवार
जी।
तो आज वो पूरी तरह से ये हो चुका है कि
जो परिवार पहले रिसीवर था
आज वो देने में आ चुका है,
सक्षम बन गया है,
सक्षम बन गया है और पूरी हेल्प कर रहा है। तो स्वामी का जो मिशन है वो यही हमें शिक्षा देता है कि अगर हम स्वामी के मिशन को आगे लेके जाना है तो हमें समाज में ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए और ऐसे लोगों को ये समझाना चाहिए कि अगर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आगे आप भी इस मिशन में भाग लें और भगवान का काम करें, तभी हम समाज को भी सुधार सकते हैं।
बिल्कुल सिस्टर सुषमा, यही स्वामी का प्रेम है, यही स्वामी का मैसेज है पूरी सोसाइटी के लिए कि प्रेम के साथ सबको साथ लेकर हम चलें। और इसी तरह घर घर तक, हर एक इंसान तक भगवान का मैसेज पहुंच सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। जय सही राम।
सही राम।
अभी आप सुन रहे थे साई का प्यार जीवन आधार। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य संगठन के जिला हमीरपुर से वहां की महिला प्रभारी श्रीमती सुषमा कुमारी जी के साथ श्रीमान विकास गुप्ता जी के मध्य हुई भेंट वार्ता प्रसारित की गई थी। ये वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 9 जनवरी सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी।
गान सरिता में आपका स्वागत है। प्रेम अवतार भगवान श्री सत्य साई बाबा ने हमें हृदय में प्रेम रखते हुए संसार में प्रेम फैलाने का संदेश दिया है, और न केवल संदेश दिया है बल्कि अपने जीवन की घटनाओं के माध्यम से निश्चल व निस्वार्थ प्रेम से लाखों करोड़ों दिलों को परिवर्तित कर प्रेम और सदाचरण के रास्ते पर चलने का आनंद दिया है। अगर हृदय में प्रेम है और भगवान का साथ है तो निश्चित रूप से हम स्वामी के सानिध्य व प्रेम का आनंद प्राप्त करेंगे। भगवान की इन्हीं शिक्षाओं पर आधारित एक मूल्य गीत प्रस्तुत है जिसके बोल हैं, प्रेम भरा हो मन में सदाचरण जीवन में। इस गीत में विशेषतः श्री सत्य साई बाल विकास के बच्चों के लिए सत्य धर्म शांति प्रेम और अहिंसा के साथ साथ भगवान बाबा द्वारा बताए गए 5D यानी भक्ति, कर्तव्य, विवेक, अनुशासन, दृढ़ संकल्प को भी गीत व संगीत में पिरोया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्ष 2019 को हम बाल विकास कार्यक्रम के स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं, इसलिए ये गीत श्री सत्य साई बाल विकास के बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर व उपयोगी मूल्य गीत है।
अब प्रस्तुत है अवतार वाणी। स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में कभी भगवान बाबा द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का आज हम इसके अंतर्गत एक भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें स्वामी हमें सच्ची स्वतंत्रता क्या है इस विषय में समझा रहे
हैं। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम, मानव जन्म चाला उत्कृष्टमैनटुवंटिदि, सौजन्यमैनटुवंटिदि, सौशील्यमैनटुवंटिदि।
मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ, पवित्र एवं बहुमूल्य है।
अट्टी मानव जन्म एत्ति केवलमु पशुपक्षी मृगादल वाले मनमु सुखानि अनुभविंचनकोटं, इदि केवलमु विद्यार्थुलके कादु मानवत्वमुनिके कळंकम।
मानव जन्म लेने के पश्चात पशु पक्षियों की भांति सुख साधनों के पीछे भागना मानव जाति को कलुषित करता है। वास्तव में सुख साधन क्या है?
मन యొక్క కోరికలను అదుపులో పెట్టుకోవాలి,
अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाना।
ఇంద్రియములను నిగ్రహించాలి,
इंद्रियों पर नियंत्रण रखना।
అప్పుడే మనకు సరైనటువంటి ఆనందము మనకు లభ్యమవుతుంది,
केवल तभी तुम्हें सच्चे आनंद की अनुभूति हो सकती है।
ఇది ఏ నిజమైనటువంటి స్వాతంత్రం, ఒక నిజమైనటువంటి ఒక స్వాతంత్రము,
यही सच्ची स्वतंत्रता है।
स्वतंत्र
स्वतंत्रता क्या है?
स्वतंत्र इष्टानुसार संचरించడము, इष्टानुसार ప్రవర్తించడము కాదు।
अपनी मर्जी से जैसा चाहो वैसा करना स्वतंत्रता नहीं है।
స్వాతంత్రము హృదయం నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి ఒక ఆత్మబోధనే నిజమైన స్వతంత్రము।
స్వ వో ఆవాజ్ జో సీధా స్వయం కే హృదయ సే ఆయే ఉసే హీ స్వతంత్రతా కహతే హై।
సారూప్య సారూప్య సామీప్య సాయుధ్యం అనేటువంటి ఒక తత్వము స్వకు మాత్రమే సరి అయినటువంటి అర్థమిస్తుంది।
నికట్త సామీప్యత ఆర్ ఏకాత్మత హీ స్వతంత్రతా కే సహీ అర్థ హై।
కనుక ఆత్మ జ్ఞానము, ఆత్మ నిగ్రహము, ఆత్మాన్వేషణ, ఆత్మానందము ఇవే నిజమైనటువంటి ఒక స్వాతంత్రము।
సచ్చి స్వతంత్రత కా అర్థ హై ఆత్మజ్ఞాన్, ఆత్మనియంత్రణ ఆర్ ఆత్మాన్వేషణ అర్థాత్ స్వయం కీ ఖోజ్।
కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈనాడు భారతీయులు స్వాతంత్రమును సంపాదించారు కానీ ఐకమత్యమును సంపాదించలే।
యహ్ బహుత్ హీ నిరాశాజనక్ హై కి హమ్నే ఆజాదీ తో పా లీ హై పర్ ఏక్తా నహీ। विद्यार्थियों,
ऐकमत्यम चाला अवसरम,
एकता अति आवश्यक है।
व्यक्तिगत साधించలేనిటువంటి కార్యములు సమష్టిగా సాధించడానికి ఎంతయో అవకాశం ఉండాలి।
जो कार्य एक अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकता वही काम समाज के एकजुट प्रयास से संभव है।
కనుకనే వేదము కలిసి మెలిసి తిరుగుదాం,
हम सभी साथ चलें।
కలిసి మెలిసి పెరుగుదాం,
हम सभी साथ बढ़ें।
కలిసి మెలిసి తెలుసుకున్న తెలివిని పోషించుదాం,
हम सभी ने जो सीखा है उसका अनुसरण करें।
కలిసి మెలిసి కలతలేక చెలిమితో జీవించుదాం అని,
बिना किसी विवाद के हम सभी को मैत्रीपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत करना चाहिए।
కనుక అందరూ కలిసి మెలిసి ఉండాలి,
हम सभी को साथ रहना चाहिए।
ప్రాచీన కాలం నుండి భారతదేశంలో అనేక మంది శక్తి సంపన్నులు లేకపోలేదు।
प्राचीन काल से ही भारत में योग्य लोगों की कोई कमी नहीं है।
श्रीमंत लेकपोलेद,
यहाँ पर बहुत से धनवान व्यक्ति हुए हैं।
महाराज लेकपोलेद,
महाबलशाली राजा हुए हैं।
मेधावुल लेकपोलेद,
ज्ञानी महापुरुष हुए हैं।
विद्यावंत लेकपोलेद,
और प्रकांड विद्वान हुए हैं।
सूरुलु वीरुलु गंभीरुलु कुडनु कावसंत मंदी भारत देश में उद्भविंचारु,
भारत में कई साहसी और पराक्रमी लोग हुए हैं।
कानी ओकरिकी ओकरिकी ऐकमत्यम लेकपोवटं चेतने भारत देशम పరదేశీయుల పాలై అనేక విధములైనటువంటి ఇక్కట్లకు గురి అవుతూ వచ్చింది।
లేకిన్ చూంకి భారత్ కే లోగో మే ఏక్తా నహీ థీ, భారత్ కో అంగ్రేజో కే అధీన్ హోనా పడా।
ఈ విధమైనటువంటి ఐకమత్యము విద్యార్థులలో అభివృద్ధి కావాలి.
విద్యార్థియో ఇస్ ప్రకార్ కి ఏక్తా వికసిత్ కర్నీ చాహియే.
దేశం యొక్క సౌభాగ్యము,
దేశ్ కా సుఖ్,
దేశం యొక్క కీర్తి,
దేశ్ కీ కీర్తి
అనేటి విద్యార్థుల యొక్క నడవడిక పైన ఆధారపడి ఉంటుండాలి.
ఆజ్కే విద్యార్థియో కే వ్యవహార్ పర్ ఆధారిత్ హై.
కనుకనే విద్యార్థుల యొక్క నడత సక్రమమైనటువంటిదిగా ఉండాలి.
ఇసీలియే విద్యార్థియో కా ఆచరణ సహీ హోనా చాహియే.
భవిష్యత్ భారతీయ నాయకులంతా కూడాను ఈ నేటి విద్యార్థులే.
ఆజ్కే విద్యార్థి కల్ కే హోనే వాలే నాయక్ హై.
కనుకనే స్టార్ట్ అర్లీ, డ్రైవ్ స్లోలీ, రీచ్ సేఫ్లీ. మీరు ఈ విద్యాస్థితి ఎందే చక్కని గుణములను అభివృద్ధి పరచుకొని, చక్కని ఆచరణలంతా కూడాను అభివృద్ధి పరచుకొని దేశక్షేమం యొక్క లక్ష్యాన్ని మీ చిత్తమునందు ప్రతిష్ఠించుకోవాలి.
ఇసీలియే విద్యార్థియో కో ఇస్ ఉమ్ర మే హీ సద్గుణో కో వికసిత్ కర్నా చాహియే. సహీ ఆదర్శ్ ఔర్ అభిలాషాయే రఖో ఔర్ దేశ్ కే హిత్ కే లియే కామ్ కరో.
సామాజం యొక్క శ్రేయస్సే మన లక్ష్యంగా భావించాలి.
హమారా ముఖ్య ఉద్దేశ్య సామాజిక కళ్యాణ్ హోనా చాహియే.
ఆర్య సూరులై విద్యార్థులు ఈ సమాజంలో ప్రవేశించాలి.
తుమే కర్మయోగి బన్ సమాజ్ కే లియే కామ్ కర్నా చాహియే.
ఆత్మవిశ్వాసముతో,
ఆత్మవిశ్వాస్ కే సాథ్
ఈ యొక్క సమాజంలో ప్రవేశించి
తుమే సమాజ్ మే కదమ్ రఖనా చాహియే.
తగిన విజయాన్ని సాధించాలి.
తుమే హమేషా సఫలత ప్రాప్త్ కర్నీ చాహియే.
అది ఈనాడు చాలా అవసరమైనటువంటిది.
యహ్ బహుత్ జరూరీ హై.
నవ సమాజము, యువ సమాజము, సమ సమాజము అని అనేక సమాజములు ప్రారంభిస్తున్నారు.
లోక్ సమాజ్ మే విభిన్న సంఘటనో కి శురువాత్ కర్ రహే హై. సమానతా కే ఆధార్ పర్ నయ సామాజిక్ వర్గ్ బనా రహే హై.
ఈ నూతన సమాజంలో కూడాను మనకు అక్కర్లేదు.
హమే ఔర్ నయ విభాజిత్ వర్గ్ నహీ చాహియే.
గుణవంతులైనటువంటి బాలబాలికలు ఈనాడు అభివృద్ధి కావాలి.
హమే నైతిక్ యువా చాహియే.
అట్టి గుణవంతుల వల్లనే ఈ దేశము సరైనటువంటి యొక్క స్థితికి రాగలదు. కానీ కేవలము సమాజములు స్థాపించి సమాజం యొక్క నిబంధనలు ఉల్లంఘించి కేవలం ప్రవర్తించడము ఇది కాలమును వ్యర్థం చేసినట్టే అవుతుంది.
కేవల నైతిక యువక్ యువతీయా హీ దేశ్ కో ఊంచాయియో పర్ లే జా సక్తే హై. ఉన్ లోగో కే ద్వారా నహీ జో నయే సంగఠన్ బనాకర్ సమయ గవా రహే హై.
సమాజము అదే మానవ సమాజము.
కేవల్ ఏక్ హీ సమాజ్ హై, మానవ సమాజ్.
మానవ అందరూ ఒక్కటే.
సమగ్ర మానవ జాతి ఏక్ హై.
అందరూ ఐకమత్యంగా కలిసి
సభీ కో ఏక్ సాథ్ రహనా చాహియే.
చేస్తే భారతదేశము ఎంత ఆదర్శవంతమైన దేశంగా ఉంటుంది.
అగర్ హమ్ ఏక్జుట్ హోకర్ కార్యరత్ రహేంగే తభీ హమ్ సమగ్ర విశ్వ కే లియే ఆదర్శ్ బన్ సక్తే హై.
అభి ఆప్ సున్ రహే థే హమారా కార్యక్రమ్ అవతార్ వాణి. ఆజ్ ఇస్ కే అంతర్గత్ భగవాన్ ద్వారా స్వాధీనతా దివస్ పర్ దియే గయే ఏక్ సంభాషణ్ కా ఏక్ భాగ్ ఇస్మే ప్రస్తుత్ కియా గయా థా, జిస్మే భగవాన్ హమే స్వతంత్రతా కే వాస్తవిక్ అర్థ్ కో సమ్జా రహే థే.
इसी के साथ हमारी आज की साई प्रेम वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति का अब समापन होता है. उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा. अपने सुझाव एवं परामर्श से हमें ईमेल द्वारा या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जरूर अवगत कराएं. हमारा पता है listener@radiosai.org. मैं आपके लिए स्पेल कर देती हूँ listener@radiosai.org. एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393258. हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं. इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें.
आप हमसे अपने विचार वहां कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी देकर भी साझा कर सकते हैं.
हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को मन मुताबिक सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर भी जा सकते हैं.
जिस प्रकार सूरज बेशर्त अपनी रोशनी बिखेरता है दूसरों के लिए, जिस प्रकार नदी अनवरत बहती है दूसरों के लिए, उसी प्रकार प्रभु हमारे दिल से आपका प्रेम सदा प्रवाहित होता रहे दूसरों के लिए. जय साईं राम.